हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 4, 5, 6 एंड 7। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते ऋषभाय सात्वताम् विदुरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशये न राधसा स्वधामनि ब्राह्मणीरास्यते नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कर्मशम् तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। किरातहूणा द्रपुलिन्दपुल्कषा आवेरशुम्भा यवनाकसादय येनी च पापा यदपाशयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्वे प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 4। ब्रह्मा जी
नारद मुनि को भगवान के अवतारों के विषय में बता रहे हैं। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए।
अत्रिरपत्यमभिकाक्षतः आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यत् भगवान् स दत्तः यत् पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगधिमाः पुरुभैं यदुहैहयाध्या अत्रिरपत्यमभिकाङ्क्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्त यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्दिमा पुरुभैं यदुहै हयाध्या।
शब्दार्थ अत्रेर पत्यमभिकाक्षत, अत्रेर यानी अत्रि मुनि की पत्नी, क्षमा अत्रेर यानी अत्रि मुनि की, और अप्त्यम यानी कि उनकी संतान, अभिकाक्षत यानी आकांक्षा करते हुए। अत्रि मुनि की बड़ी इच्छा थी कि उनके यहाँ पर संतान की उत्पत्ति हो, इसलिए आह मन उन्होंने कहा तुष्ट प्रसन्न होकर। दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्त, दत्तो मतलब दिया गया, मया यानी मेरे द्वारा, अहम अपने आप को, इति स इस प्रकार, यत् क्योंकि भगवान श्री भगवान सदत्ते दत्तात्रेय। तो इस तरह से जब अत्रि मुनि की प्रार्थना सुनकर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए तो उनको दत्तात्रेय नाम से उनके यहाँ पर उत्पन्न हुए। यत भगवान, और आगे कहते हैं यत पाद पंकज पराग पवित्र योगम, यत पाद पंकज जिनके चरण कमल, पराग यानी धूलि, पवित्र देहा पूरे देह को पवित्र कर देती है, योग योग की रिद्धिम यानी ऐश्वर्य, आपुरु भयम यदु है हयाध्या, आपुरु आपु मतलब प्राप्त किया, अभय उभयम यानी दोनों लोकों के, यदु यानी यदुवंश के पिता, है हया आद्या यानी राजा, है या इत्यादि जितने भी दूसरे राजा थे। अनुवाद देखिए, अत्रि ऋषि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय यानी दत्त अत्रि के पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। दत्त आत्रेय यानी दत्त अत्रि के पुत्र बनकर, और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु हय हय इत्यादि अत्यंत ही पवित्र हुए और उन्होंने भगवान तथा आध्यात्मिक दोनों ही और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। एक बार वापिस से सुन लो कि इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के दत्तात्रेय अवतार के विषय में। वे कहते हैं अत्रि महर्षि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, दत्त अत्रि के पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया, और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु हय हय इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तथा जीव आत्माओं के मध्य पांच प्रकार से सनातन आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अतः वे अपनी भक्ति की पूर्णता के फल स्वरूप भगवान को पुत्र रूप में चाह रहे थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र के रूप में स्वयं जन्म लिया। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच में इस प्रकार के पुत्रत्व यानी वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। चूंकि भगवान असीम हैं, अतः उनके पिता भक्तों की संख्या अनंत है। वास्तव में भगवान समस्त जीव आत्माओं के पिता हैं, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमवश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वह उन्हें पुत्र के रूप में चाहते हैं, पिता के रूप में नहीं। अत्यंत ही सुंदर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी, जीव आत्मा और परमात्मा यानी भगवान और जीव आत्मा के मध्य में जो अत्यंत ही सुंदर संबंध स्थापित होते हैं, उनके विषय में बताते हैं। वास्तव में जीव आत्मा तभी संतुष्ट रह सकती है जब उसे प्रेम प्राप्त हो और वो प्रेम का आदान प्रदान करे, और यही करते आ रहे हैं जीवन भर। किसी को अपना मानकर उसको प्रेम करके हम आनंदित होने की चेष्टा करते आए हैं, और ये प्रेम प्राप्त करने की तड़प उस समय तक बनी रहती है जब तक कि उसे अपना वास्तविक प्रेमी या प्रीतम प्राप्त नहीं हो जाता। तो वास्तविक आत्मा, हम क्योंकि आत्मा है तो आत्मा प्रेम केवल भगवान से कर सकती है, लेकिन अज्ञानता के कारण इस भौतिक जगत में अपने प्रेमी को ढूंढकर और अलग अलग स्वरूप में अपने प्रेमी को प्राप्त करके जीवात्मा सोचती है कि शायद इसी से संतुष्टि होगी, लेकिन ये संतुष्टि तभी संभव है जब जीव आत्मा का संबंध भगवान से जुड़ेगा। और भगवान के साथ संबंध जोड़ने के पांच यहाँ स्तर बताए गए हैं, शांत भाव, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य तथा माधुर्य। और उनमें किसी भी संबंध से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ के आत्मा जो है वो संतुष्ट हो सकती है। और यहाँ पर क्योंकि अत्रि मुनि का वात्सल्य भाव था, इसलिए उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र बनकर आइए, ताकि मैं पिता बनकर आपको आपकी प्रोटेक्शन करूं, आपका लालन पालन करूं। वैसे तो भगवान सबके पिता हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोलते नो डाउट, हम सब भगवान की संतान हैं, लेकिन संतान होने से क्या होगा कि भगवान को हमारी सेवा करनी पड़ेगी, है ना। पिता हमेशा सेवा करता है, पालन करता है, उसको हर चीज प्रोवाइड करता है, उसको खेल मतलब स्कूल लेके जाता है, वस्तुएं लेकर जाता है, खिलौने लेके देता है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता की होती है ना। लेकिन भक्त जो है वो भगवान से सेवा करवाना नहीं चाहता है, इसलिए भगवान का बच्चा बनने की इच्छा से ज्यादा उसकी इच्छा होती है मैं भगवान का बाप बनूं। क्योंकि बच्चा बनेंगे, अगर भगवान को पिता बनाएंगे तो भगवान को सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम भगवान के पिता बनेंगे और भगवान हमारी संतान, तो पूरी पूरी सेवा जो है वो भक्त को करने का अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वह उन्हें पुत्र के रूप में चाहते हैं, पिता के रूप में नहीं। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा का स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। निर्विशेषवादी भगवान से
टीकाकार होना चाहते हैं, किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है और बड़े से बड़े एकेश्वरवाद से आगे होता है। इस निकट संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की किसी भी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा योग सिद्धियां सम्मिलित रहती हैं। अतः भगवत भक्त अलग से उनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं गंवाता। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भक्त जब भगवान को प्राप्त कर लेता है तो फिर भगवान के साथ साथ जो कुछ भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में प्राप्त करने के लिए योग्य होता है वो स्वतः उसका हो जाता है, चाहे वो योग सिद्धियां हो या कोई दूसरी जितनी भी क्वालिटीज हैं, जितनी भी क्वालिफिकेशन है, वो सब भगवत प्राप्ति के बाद स्वतः आ जाएगी। उसके लिए अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए भक्त बड़ा चतुर होता है, वो कुछ और प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता, वो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता। और क्योंकि भगवान को जब वो प्राप्त कर लेता है तो वो भगवान से भी बड़ा हो जाता है ना। जिसकी संपत्ति हो जाते हैं कृष्णा जिसकी संपत्ति है तो वो तो कृष्ण से बढ़कर हुआ ना। निर्विशेषवादी क्या चाहते, वो तो भगवान के अंदर मिलकर भगवान बनना चाहते ना। लेकिन भगवान को जो पा लेता है, वो भगवान जो संपूर्ण षडेश्वरीय के एकमात्र स्वामी है, उनको जिसने पा लिया, जो भगवान जिसका हो जाता है, उसको और कुछ प्राप्त करने के लिए चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतः भगवत भक्त अलग से उनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं गंवाता। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में पूरी तरह लगाए, तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। किंतु अन्य सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने रूपी गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हाय हाय है, जिसने भक्ति के द्वारा ऐसी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया। भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर महाराज हयहय का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भक्ति करके, जिन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया था, सारी सिद्धियां प्राप्त करनी थी, केवल एक भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उनका वध कर दिया था। तो भक्तों को भगवान की भक्ति करने के समय, भगवान के नाम जप करने के समय इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कभी भी किसी भी प्रकार के, चाहे वो हमारी नजरों में छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन कभी किसी भक्त की के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम भक्त के चरणों में अपराध करते हैं, किसी भक्त की निंदा करते हैं, किसी भक्त को दुख पहुंचाते हैं, किसी भी प्रकार से यदि कभी भक्त के हृदय में हमारी कारण कोई दुख होता है, तो फिर हमारी पूरी भक्ति का सर्वनाश हो सकता है। इसलिए हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। यदि हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति बनी रहे, तो उसके लिए भक्ति करने से भी अधिक आवश्यक है कि भक्तों के को कभी भी हमारे दूसरे जो भक्त हैं उनको कभी हमारे कारण कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो उसके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, और जब भगवान देख रहे हैं तो भगवान को हम भगवान की दूसरी तरफ से तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके हृदय में बैठे हुए भगवान को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो भला भगवान हमारी सेवा को क्यों स्वीकार करेंगे। इसलिए ये भक्तों का कर्तव्य है कि वो अपनी साधना के साथ साथ इस बात का बहुत विशेष रूप से ख्याल रखें कि किसी को हमारे कारण कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, हमको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, सबके साथ मित्रीय भाव रखकर, मतलब किसी को भी द्वेष भाव से नहीं देखना चाहिए, सबके साथ प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमको देखना चाहिए ना कि हर दिल में तो वही कृष्ण है जिसको मैं प्रेम करता हूँ, तो वो भले मेरे साथ कैसा भी सुलूक करते हैं लेकिन मुझे उनके साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है कि चाहे वो कृष्ण मेरे साथ कैसा भी करे, उनके हृदय में भी कृष्ण है, तो आश्लिष्य व पादरताम विनष्टुम अदर्शनम, भले वो मुझे चरणों से कुचल भी दे, अब मेरा हृदय भी तोड़ दे किसी भी स्वरूप में आकर, जरूरी नहीं है कि कृष्ण स्वयं कृष्ण के रूप में आकर ही हमारी परीक्षा लेंगे, किसी न किसी स्वरूप में यदि वो हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो भी हमें देखना चाहिए कि वे तो साक्षात कृष्ण के ही भेजे हुए हैं, हमारी परीक्षा लेने के लिए हैं, लेकिन हम अपनी इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, किसी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि किसी का दिल दुखे और भगवान की भक्ति से घिर जाए हम। इसलिए आगे आगे अभी ब्रह्मा जी चार कुमारों के विषय में बता रहे हैं, वे कहते हैं तप्तम तपो विविध लोक शिक्षयामि आदौ सनत् स्वतपत तपस सच्युत सुनो सनोभूत प्राकल्प संप्लव विनिष्ट मिहात्म तत्व सम्यक् जगाद मुनयो यद चक्षतात्मा तप्तं तपो विविध लोकसि श्रिक्षयामि आदौ सनत् स्वतपस सच्युत मनोभूत प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्म तत्वं सम्यक् जगाद मुनयो यद चक्षतात्मा तप्तं तपो विविध लोकसि शिक्षयामि आदौ सनत् स्वतपस सच्युत मनोभूत प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्म तत्व सम्यक् जगाद मुनयो यद चक्षतात्मा तप्तम तपो विविध लोक, तप्तम यानी तपस्या करके, तपः मतलब तपस्या, विविध लोक यानी विभिन्न लोक, सिसृक्षया में, सिसृक्षया यानी सृष्टि करने की इच्छा से, मैं यानी मेरा, ब्रह्मा जी कह रहे मैं, मुझे क्योंकि भगवान ने ये आदेश दिया कि सृष्टि करनी है तो मैंने बहुत सारी तपस्या की। आदौ सनात स्वतपः चतु मनोभू आदौ यानी सर्वप्रथम, सनात यानी श्री भगवान से, स्वतपस्या यानी अपनी तपस्या के बल से स वे भगवान, चतुसना यानी चार कुमारों के जनक के नाम से, जिनके नाम क्या हैं, सनत कुमार, सनक, सनंदन तथा सनातन, अभूत मतलब प्रकट हुए, मैंने तपस्या की और चार कुमार के रूप में भगवान प्रकट हुए। प्राकल्प संप्लव विनष्ट विनष्ट मिहात्म तत्व, प्राकल्प मतलब पूर्व कल्प, जो पूर्व सृष्टि थी, संप्लव यानी भाड़ में, विनष्टम नष्ट हुए, इह आत्मा इस संसार में आत्मा, और तत्वम यानी सत्य। सम्यक जगात मुनयो, सम्यक मतलब पूर्णतया, जगात प्रकट हुआ, मुनय यानी मुनिगण, यद यद चक्षतात्मा, यद मतलब जिन्होंने, अचक्षत यानी स्पष्ट देखा, आत्मा यानी आत्मा को। अनुवाद देखिए, विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और जब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों यानी सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतरित हुए, पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य यानी आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत ही सत्य का साक्षात्कार हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भगवान का नाम सनात तथा सनातनम है। यद्यपि भगवान तथा जीव आत्मा गुणात्मिक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत हैं, किंतु भगवान सनातनतम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जीव आत्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनतम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत जगत में पतित हो सकते हैं। अतः जीव आत्मा सनातनम भगवान में से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताया कि आत्मा और परमात्मा में सेम क्वालिटीज हैं, लेकिन उनके अंदर भेद भी है। क्या भेद है? कि जो आत्मा है उन वो भी सनातन है, उनके अंदर भी बाकी सारे षडेश्वरी हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मा जो है वो क्वालिटी में भले सेम हो, लेकिन क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट है, और इसलिए वो अशाश्वत जगत में पतित हो सकती है। भले ही वो सनातन है, लेकिन सनातनतम यानी सर्वश्रेष्ठ सनातन नहीं है। जीव आत्मा सनातनम भगवान से मात्रा की दृष्टि में भिन्न है। आगे शिवप्रभा जी कहते हैं, सन्न शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देता है, तो बदले में भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देता है। श्रीमद् भगवद गीता 4.11 में इसकी पुष्टि हुई है। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजामि। ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान लुप्त हो चुका था, इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे। अन्यथा पुनः सृष्टि करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। चूंकि दिव्य ज्ञान आदौ सनात स्वतपसा च सनोभूत, सनोभूत मतलब संत कुमार प्रकट हुए ना, वो ऐसा है। सन यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते सन जो है वो दान के अर्थ में भी आया है। जब भगवान को भक्त अपना सर्वस्व दान प्रदान कर देते हैं, सर्वस्व जो कुछ भी होता है वो दान स्वरूप में सौंप देते हैं, तो फिर भगवान क्या करते हैं? क्या भगवान बस दान स्वीकार करके रख देते हैं? नहीं, भगवान के साथ हम जैसा संबंध जोड़ते ना, भगवान वैसा ही संबंध हमारे साथ जोड़ते हैं। जब जीव अपना सर्वस्व भगवान को प्रदान कर देता है, तो भगवान की भी एक ही इच्छा होती है कि मैं अपना सर्वस्व जीव को प्रदान करूं। ये कितना बड़ा सस्ता सौदा है ना, कि हमारे पास तो कुछ नहीं भगवान को देने के लिए। ये खोखला देह है, ये बिल्कुल मेला कुचेला मन है हमारा, ये अपराधों से बड़ा हुआ हमारा शरीर, हमारा हृदय, ये भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और उसके बदले में भगवान की अनुकंपा, भगवान का प्रेम, भगवान का आश्रय, भगवान की प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाएगी। क्या ये हमारे लिए कितना हितकर है, हमारे लिए कितना लाभदायक है? हम भगवान को, हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो कितना ही गणित है, जो भी है, वो सब वैसे ही भगवान का है। ना चाहते हुए भी उसे सौंपना है, लेकिन यदि चाह कर पहले से ही, वो समय आने से पहले यदि भगवान के चरणों में स्वयं को न्यौछावर कर दें, तो बदले में भगवान हमें क्या देंगे? भगवान अपना सर्वस्व दे देंगे। हमारे पास हमारा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है, फिर भी हम जब भगवान को उसमें से कुछ देते हैं, तो भगवान कितना अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। और जब भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता और भगवान को अपने आप को सौंप देता है, तब भगवान ऋणी हो जाते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते ना, तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं, काश कुछ ऐसा करूं जिससे मैं उसे प्रसन्न कर सकूं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 4.11 में भी इसकी पुष्टि हुई है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे शरण में आता है, मैं उसी भाव से उसको रिजल्ट प्रोवाइड करता हूँ। ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प में की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए थी, और प्रलय जब होता है ना, तो सब कुछ जो ज्ञान होता है ना, जीव आत्माओं के उद्धार का और भगवान के साथ जो संबंध है, ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान जो है वो लुप्त तो हो जाता है, इसलिए उसे दोबारा से जीवित करना होता है। अन्यथा पुनः सृष्टि करने का कोई मतलब ही नहीं है, है ना? यदि सृष्टि हो जाए और जीव को ये ज्ञान ना हो कि मेरे आने का इस संसार में, या फिर बारंबार जन्म मरण के चक्कर का कारण क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है, मुझे प्राप्त किसको करना है, यदि ये ज्ञान ही नहीं हो, तो फिर तो सृष्टि करने का कोई मतलब ही नहीं। ये सृष्टि क्यों की जाती है जानते हैं? वो सृष्टि करने का एक ही उद्देश्य है भगवान का, कि वो जीव आत्मा को नेक्स्ट चांस प्रोवाइड करना चाहते हैं, कि किसी तरह से उसे दूसरा अवसर प्राप्त हो कि वो दोबारा से ऐसा मतलब सेवा करे भगवान की, या परम सत्य के साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करने के लिए बार बार हमको चांस मिलता है। लेकिन यदि वो आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं होगा कि हम आत्मा हैं और हमें भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना, तो सृष्टि करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है। अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्यबद्ध जीवों को मुक्ति का असर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति भगवान ने सन कुमारों अर्थात सनक, सनंतन, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञानावतार थे, अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। इन चारों कुमारों के पदचिन्हों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि क्योंकि मूलभूत आवश्यकता हमारी क्या है, वो है दिव्य ज्ञान। मूलभूत अवस्था आवश्यकता जो समझ रहे, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो हमारे शरीर की आवश्यकता है, लेकिन हम क्योंकि आत्मा है ना, तो आत्मा की मूलभूत अवस्था है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, ये ज्ञान प्राप्त हो कि मैं आत्मा हूँ तो मेरी संतुष्टि किस तरह से प्राप्त होगी, मैं आत्मा हूँ तो मेरा लक्ष्य क्या है, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर प्रदान करने के लिए भगवान ने चतुर कुमार के स्वरूप में इस संसार में प्रकट हुए, और उन्होंने इतनी सरलता से इस ज्ञान को ज्ञान का बखान किया, उसका इतनी स्पष्ट व्याख्या की कि सब मुनियों ने उसे बिना किसी कठिनाई के स्वीकार किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इन चार कुमारों के पद चिन्हों पर यदि कोई चलता है तो वो निश्चित रूप से अपने अंतःकरण में भगवान के दर्शन कर सकता है। जैसे हमारी चार संप्रदाय है, तो उन चार संप्रदाय, चार वैष्णव संप्रदाय में एक संप्रदाय जो है वो चतुर कुमार यानी कुमार संप्रदाय जो है वो चतुर कुमार से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि भगवान ने उनको डायरेक्ट से, वो भगवान के अवतार ही थे लेकिन उनको भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने इस तरह से जो परंपरा उत्पन्न की, तो उसके द्वारा यदि कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के अपने अंतःकरण में अपने भगवान के दर्शन कर सकता है। आगे ब्रह्मा जी नर नारायण अवतार के विषय में कहते हैं, धर्मस्य दक्ष दुहिते दुहित यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देवस्त्वरंग पितृ प्रतना घटितुम न शेकु धर्मस्य दक्ष दुहिते यजनष्टि यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देव्यस्त्वरंग प्रीतना घटितुम न शेकु धर्मस्य दक्ष दुहित। धर्म जो थे, दक्ष की जो पुत्री है, दक्ष की जैसे नौ कन्याएं थी उसमें से एक का नाम था मूर्ति, और मूर्ति का विवाह किसके साथ हुआ था? धर्म के साथ। धर्मस्य दक्ष दुहित दुहित यजनिष्ठ मूर्तिया, मूर्तिया यानी मूर्ति नाम की जो कन्या थी उसने जन्म दिया किसको? नारायण नर इति स्वतप प्रभा, नारायण और नर, नर और नारायण दो पुत्रों का जन्म हुआ स्वतप यानी अपनी तपस्या प्रभाव यानी शक्ति से। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि दृष्ट्वात्मन भगवत नियम नियम व लोभम दृष्ट्वात् आत्मन भगवान, श्री भगवान जो थे दृष्ट्वामना देखकर अपना, तो नियम अवलोप व्रत को भंग करके, जब देवताओं ने देखा कि भगवान की इतनी कठिन तपस्या हो रही है नरनारायण, तो फिर उन्होंने क्या किया? नियम अवलोप का मतलब होता है उस व्रत का भंग करने का प्रयास किया उनकी परीक्षा लेने के लिए। लेकिन प्रयास कैसे किया? देव्या, देव्या मतलब जो नैसर्गिक सुंदरिया, देव्या जो अप्सराएं थी ना, उनको उनके सामने भेजा और वो अलग अलग अपने वेशभूषा से, अपनी कला से, नृत्य कला से उनको, उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करने लगी। तू अनंग प्रतनाम, तू मना लेकिन, अनंग प्रतनाम का मतलब होता है कामदेव के सखा, घटी तुम होने के लिए ना शेखु, ना शेखु कभी ना संभव हो सके। लेकिन ये भगवान है और भगवान जो है वो कभी भी कामदेव का शिकार नहीं हो सकते, इसलिए भले कितनी अप्सराएं उनके सामने आई और वो सारी अप्सराएं अपने सारे नृत्य कला इत्यादि को प्रदर्शन करने के बाद भी हार गईं, क्योंकि वो तो भगवान थे, वो तो उन पर मोहित हुए नहीं, उन्होंने बल्कि क्या किया, अपने अंदर से और बहुत सारी अप्सराएं निकाल के उनको उनके कंपटीशन में डाल दी कि भाई देखो तुम लोग मुझे क्या, मेरे तपस्या को भंग करोगे, मेरे पास तो तुमसे भी अधिक सुंदर स्त्रियां हैं, ये सुंदरियां हैं। फिर उनमें से जो नरनारायण ने जो प्रकट की थी ना, उनमें से एक अप्सरा इंद्र को बोला, देखो मेरे पास तो कितनी अच्छी अच्छी अवसर है, इनमें से तुम्हें चाहिए तो तुम कोई ले लो, तुम्हारी स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के काम आएगी, मगर तुम्हारी ये अवसराएं मुझे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर रही हैं। तो उर्वशी जो है वो स्वर्ग की में जो रहती है, वो उर्वशी नर नारायण की दी हुई एक भेंट है इंद्र को, जो अब जो हमेशा से स्वर्ग में रहती है। तो यहाँ पर यह बताने का तात्पर्य है कि भगवान जो है वो तपस्या करने के लिए नरनारायण के रूप में प्रकट हुए हैं, और उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की ताकि जन कल्याण हो सके। जीव आत्माएं जो संसार में आई हैं, तो हर कदम पर जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए, या उनको जो कठिनाइयां हो रही हैं, या संसार में किस तरह से जीव का कल्याण हो सके, इसके लिए तपस्या, ये कंटिन्यूस तपस्या कर रहे हैं। बद्रिकाश्रम में नर नारायण जो है वो सदैव तपस्या कर रहे हैं ताकि जीवों का कल्याण हो सके। अनुवाद देखिए, उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्मसंयम की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण जुड़वे रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने के लिए आई, किंतु असफल हुई, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, स्रोत तो हैं ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्मसंयम के भी उद्गम हैं। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसीलिए सनातन धर्म अथवा वर्ण आश्रम धर्म पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के चार विभाग किए जा सकते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक होती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के रूप के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के निमित्त है। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं के तुरंत ही वह भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बने जाता है। स्त्री के साथ जड़वा हो जाने के बाद ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता के लिए, ये सब जो माया जाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य हैं, मनुष्य को घेर लेते हैं, और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है और परम साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्रायः उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क ना करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह बलि भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। क्योंकि आयु विशेष रूप से कामेच्छा अत्यंत प्रबल होती है क्योंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत ही प्रबल होती है, इसीलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। यह छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है, जो गृहस्थ ब्रह्मचारी की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शास्त्रोनुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह कुत्ते बिल्लियों की तरह का ग्रस्त नहीं होता। ऐसा ग्रस्त 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है तब वानप्रस्थ ही संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने को विलग कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए हैं। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि जब दैवी सुंदरियों ने देखा कि भगवान की योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं है। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता रहता है उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता है। इसी प्रकार भगवान अपनी साधनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो यह नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ या कि द्वारिका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य में शिक्षा दी है कि वस्तुतः मनुष्य जीवन का लक्ष्य अपनी इच्छाओं को या स्पेशली काम इच्छा को पूर्ण करना नहीं है। ये केवल सनातन धर्म में ही इतनी सुंदर शिक्षा प्रदान की जाती है। ये सनातन धर्म जो है वो जीव को सनातन आनंद प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाता। बाकी जितने भी यहाँ पर धर्म हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है कि वो जन्नत में जाना चाहते हैं, वहां पर हूरों के साथ या अप्सराओं के साथ संभोग करना, यहाँ तक कि उनका लक्ष्य है। इस भौतिक जगत में भी ज्यादा से ज्यादा कैसे वो इंद्रिय तृप्ति करें, ज्यादा से ज्यादा वो कैसे काम इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें, उसी के लिए ही बाकी सब जगहों पे बताया जाता है। लेकिन सनातन धर्म में ये बताया जाता है कि आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिलता है। तपस्या के कठोर जीवन में सबसे पहला जो कार्य करना है वो क्या है, स्त्री संग से दूर रहना है। इसलिए जो मानव जीवन के चार विभाग किए गए हैं, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें से तीन विभाग यानी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास में स्त्रियों से दूर रहने के लिए कठोर आदेश है कि वानप्रस्थ में कोई भी स्त्रियों का संग नहीं करता। ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त की जाती है और शिक्षा प्राप्त जब 5 से लेकर 25 साल तक शिक्षा इतनी कठोरता से प्राप्त की जाती है, स्त्री संघ के लिए उसको बिल्कुल ना अंदर से उत्साह उसका समाप्त कर दिया जाता है कि नहीं, स्त्री संघ से तो हमारा पतन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जैसे श्री प्रभुपाद जी ने बताया, हर एक प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो है स्त्री का संग करना। क्योंकि यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो इसे स्त्री के रूप में आकर्षण से मुक्ति चाहिए। जीव आत्मा स्त्री से सम्मोहित के लिए स्त्री से सम्मोहक तत्व है। मोह जिसके कारण होता है ना, वो जीव आत्मा को स्त्री के कारण होता है। शुरू शुरू में जब तक स्त्री जीवन में नहीं होती है ना, तब तक ना जो जीव होता है, मनुष्य होता है, वो आनंद से जी सकता है। उसको किसी वस्तु की, घर बार जो है ना, इसमें इतना आकर्षण नहीं होता है। वो अपने लिए जी सकता है, ये सोच कर जी सकता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। किंतु नर रूप में, विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए जीवन मिला है। इसलिए सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वह भौतिक बंधन के कठोर ग्रंथि में का शिकार बन जाता है। बस विवाह हो गया तब उसके घर चाहिए, उसको रहने के लिए स्थान चाहिए, उसको खाने पीने के लिए सही वस्तु चाहिए, उसको है ना, फिर विवाह होने के बाद संतान होगा तो संतान को शिक्षा देने के लिए धन चाहिए। तो ये सारा जो झंझट है ना, वो किस लिए आता है, स्त्री के संग से आता है। इसलिए ये नर और नारायण तपस्या करके जीव को यह सिखा रहे हैं कि ये जीवन नहीं है जो हम जी रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि संसार में यही जीवन कहलाता ना, बच्चा पैदा होता है, इसकी परवरिश करते हैं, अच्छे से उसको स्टडी करवाते हैं, एजुकेशन प्रदान करते हैं, अच्छा जीवन देते हैं, और फिर जब वो अच्छे से जॉब करने लगता है तब यही बताते हैं कि जल्दी से तुम्हें अच्छी नौकरी मिले ताकि तुम धन कमाओ, ताकि तुम्हारी अच्छी जगह पर तुम्हारा विवाह हो जाए, किसी अच्छी लड़की के साथ तुम्हारा विवाह कर दे। बस यही जीवन का एक उद्देश्य रह गया है, विवाह करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर उनके साथ वही प्रोसेस जो कि हमने किया अब तुम करो, है ना। यही एक लानत भरा जीवन गुजारने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला, मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला। यदि इसी झंझटों में पड़े रहेंगे तो भला कब हम भगवत प्राप्ति करेंगे, कब, कौन, क्या इस मनुष्य जीवन से बढ़कर कोई ऐसी अवस्था आएगी जिसमें हमें आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार करने का अवसर मिलेगा। इसलिए ये मनुष्य जीवन इतना फिजूल कामों के लिए नहीं मिला है। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे बताया कि एक विशेष आयु ऐसी आती है जिसमें जीव जो है वो कामेच्छा के कारण अत्यंत ही परेशान होता है, जिसके कारण गुरु जो प्रमाणिक गुरु होते हैं उन्हें विवाह करने का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन जो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है उसे विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। और वो क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति। जब जीव जो है इस भौतिक जीवन में स्त्री और संतान के प्रेम में फंस जाता है ना, तो भगवत प्राप्ति बहुत दूर हो जाती है। लेकिन यदि स्त्री संग और संतान संग यानी गृहस्थ का झंझट नहीं होगा, तो फिर बहुत आसानी से और बहुत शीघ्रता से जो है वो हम भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी संभव हो ये घर बार, ये जो बहुत आकर्षण उत्पन्न हो गया है संसार में, ये जो बहुत आसक्ति मन में सबके अंदर सब परिवार के अंदर हो गई ना, उसको धीरे 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 कम करके उस आकर्षण को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। वास्तव में किसी के साथ किसी का कोई संबंध हो नहीं सकता। आत्मा का इस भौतिक जगत में किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उससे भी बड़ी बात क्या है पता है? आत्मा का इस भौतिक जगत में किसी दूसरी आत्मा के साथ भी कोई संबंध नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है कि शरीर के साथ खाली संबंध नहीं है, किसी दूसरी आत्मा के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का केवल एक ही संबंधी है, केवल एक ही प्रेमी है, वो है भगवान। इसलिए आत्मा को अपने वास्तविक संबंध, वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है, वास्तविक जो हमारा प्रीतम है, उसकी ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। ये संसार में जो आजकल हमें जो संबंध मिले हैं, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे माता पिता के रूप में, चाहे संतान के रूप में, ये तो बस हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए हैं। जो आज हमारी माता है वो कल हमारी पुत्री भी हो सकती है, जो आज हमारी पुत्री है वो कल हमारे हमारी माता भी हो सकती है, कुछ भी। जो जिसके साथ इवन हमारे जो पति पत्नी जो होते हैं वो भी नेक्स्ट जन्म में शत्रु बनकर आ सकते हैं या किसी भी संबंध में आ सकते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किस को किस संबंध में भेजा गया। बस ये तो सारे हिसाब किताब पूरे करने के। जो संतान होती है वो हो सकता है पिछले जन्म में हमारी कोई बहुत बड़ी दुश्मन हो, जिसके कारण हम आज जो है वो इतना दुख भोग रहे हैं। तो ये तो है ना, संसार में जो कुछ आ रहे हैं हम बार बार, वो तो सब अपने कर्मों के रिएक्शंस को पूरा करने के लिए। इसलिए किसी की ओर आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि आकर्षण बढ़ गया तो उसी के कारण दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन यदि भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ गया तो फिर यद गत्वाना निवर्तन्ते, वो जगह जहाँ जाने के बाद दोबारा नहीं आना पड़ता है, उस जगह जहाँ पर कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस जगह की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो उसी भगवान के चरणों में अपने प्रेम को विस्तृत करने का प्रयास करेगा। क्यों वो घर बार झंझट में फंस कर वो भगवान से अपने आप को दूर करेगा? इसलिए नर नारायण ने ये दिखाया कि इतनी सारी सुंदर स्त्रियों की ओर आकर्षण मेरा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सारी सुंदरता, इससे करोड़ गुना अधिक सुंदरता तो मैं स्वयं अपने अंदर से प्रकट कर सकता हूँ। तो यदि भगवान के चरणों में कोई आकर्षक हो जाता है तो वो संपूर्ण सौंदर्य के मालिक है, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण प्रेम जो है वो भगवान से जीव प्राप्त कर सकता है। तो उसे उधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि काम को वश में करना बहुत कठिन है, है ना? काम जो है उसको वश में करना बहुत कठिन है, क्रोध। और अगर कोई काम को वश में कर लेता है तो भी क्रोध को वश में करना फिर कठिन हो जाता है। या फिर अलग अलग तरीके से जो विकार हैं उनको कठिनता से वश में किया जा सकता है। जैसे शिवजी को भी कामदेव जो है वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए आए थे, उन्होंने भी काम को वश में कर लिया था। शिवजी ने कामदेव को तो परास्त कर लिया था लेकिन अपने क्रोध को वश में ना कर सके और उन्होंने अपने दृष्टि से कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन भगवान इतने सौम्य हैं, इतने इतने संतुष्ट हैं कि उनके अंदर ये सब नहीं होता। नर नारायण ने जब अप्सराएं उनको उनके तपस्या को भंग करने के लिए आई थी तो उनके अंदर कोई भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ था कि क्यों है, बल्कि और भी अपने अंदर से अप्सराएं उत्पन्न करके बोला इसमें से कोई भी पसंद है तो ले लो। इसी बात को यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कामं दहन्ति कृतिनो ननु ननु रोष दृष्टा रोषं दहन्तमुततेन दहत्य सहयं सोयं यदन्तरमल प्रविशन् बिभेति काम कथं नु पुनरस्य मन श्रयेत। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्टा रोषं दहन्तमुतते न दहन्त्य सायं सोयं यदन्तरमल प्रविशन् बिभेत बिभेति काम कथं नु पुनरस्य मन श्रयेत। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्टा। कामं दहन्ति काम वासना को यानी कामदेव को दहंती दंड देते हैं। कृति ने बड़े बड़े उग्रणी ननु रोष दृश्य रोष दृश्य मतलब क्रोध पूर्ण चितवन से। वो जब शिवजी कामदेव जब शिवजी की तपस्या भंग करने के आते तो उस पे तो वो बहुत ही क्रोधित होते हैं और उसको तो दंड देते हैं लेकिन अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते। रोषम दहंती क्रोध रोष यानी क्रोध दहंती मतलब अभिभूत हो जाते हैं। उत यद्यपि ते न दहंती ते मतलब वे न मन नहीं दहंती मतलब वश में नहीं कर पाते। उस क्रोध को तो वो वश में नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि असहयम वो दुस्सह है उसको क्रोध को वश में करना कठिन होता है। लेकिन सोयम यदंत रमलम प्रविशन बिभेति सोयम वह उसको यम क्योंकि अंतरम यानी भीतर अलम फिर भी प्रविशन यानी भीतर जाकर बिभेति यानी भयभीत होता है। और काम कथम नु पुनरस्य मन शयेत कामम यानी काम वासना कथम कैसे नु पुनः वस्तुतः फिर अस्य उस मन यानी मन में शयेत यानी शरण ग्रहण करता है। भगवान से तो कामदेव थर थर कांपते हैं फिर काम ऐसे भगवान जो काम को पराजित कर देते हैं क्रोध उनके मन में कैसे आ सकता है क्योंकि भगवान सदैव संतुष्ट रहते हैं अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उनको कोई हृदय में भगवान के हृदय में क्रोध प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि वे इन सब बातों से बहुत परे हैं। तो उनके मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने कहा बताया पहले वाले में कि मूर्खतावश लोग ये दोष देते हैं कि कृष्ण ने वृंदावन में सखियों के साथ रास लीला की थी या फिर इतनी सारी पत्नियों के साथ रहते थे। भगवान के अंदर काम इच्छा का लेश मात्र भी नहीं है वरना इतनी सारी गोपियों को छोड़कर वो मथुरा चले गए और फिर एक बार भी पलट कर नहीं आए। उस समय भगवान की आयु केवल 11 साल की थी। वो तो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। भगवान के अंदर ऐसा कोई भी दोष हो ही नहीं सकता। अनुवाद देखिए शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चित्तवन से वासना यानी काम को जीतकर उसे दंडित तो कर देते हैं किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके यानी भगवान के हृदय में प्रविष्ट नहीं कर पाता क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? भगवान के हृदय में न काम है न क्रोध है भगवान के हृदय में सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के लिए कल्याण की भावना है, भक्तों के लिए प्रेम की भावना है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब शिवजी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिवजी ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत ही भस्म हो गया। शिवजी इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध से प्रभावित से मुक्त क्रोध के प्रभाव से मुक्त ना थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी क्रोध नहीं करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। उसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर उनकी परीक्षा करने के लिए पाद प्रहार किया तो मुनि पर क्रुद्ध होने की बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल अत्यंत ही कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता की प्रतीक है। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहाँ किस तरह कोई स्थान हो सकता है। ये क्रोध से कम मतलब शिवजी ने देखो काम को तो है ना वश में कर दिया था लेकिन क्रोध को नहीं कर सके, लेकिन भगवान के अंदर जब क्रोध इतना शक्तिशाली होने के क्रोध खुद आता है ना, हमको खुद ब खुद हमारी कोई बात नहीं सुनता या कोई बात नहीं मानता तो स्वतः क्रोध की भावना आ जाती कि क्यों कोई गलत करता है हमारे साथ। लेकिन भगवान के साथ कोई कैसा भी करता है भगवान को क्रोध नहीं आता। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे काम कथम नु पुनरस्य मन श्रयेता, जिनके मन में क्रोध ही नहीं है कभी भी वो क्रोध नहीं करते तो भला काम जो कि क्रोध से कम शक्तिशाली भला उनके मन में कैसे आ सकता। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता, अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। भगवान को आपत काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं आपत काम स्वयं कर सकते हैं, उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान असीम है अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीव आत्मा हर तरह की से सीमित है, अतः जो सीमित है वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध है, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया भी जाता है तो इसमें परम आशीर्वाद यानी वरदान समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर यहाँ बात बता रहे हैं कि भगवान की सारी इच्छाएं भगवान को स्वतः पूरी करनी, मतलब भगवान को किसी और की आवश्यकता नहीं है, अपनी किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि भगवान पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वतः अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और अपने ही अंदर आनंदित सच्चित आनंद भगवान सदैव आनंद में रहते हैं। और जीव संसार में भटकता रहता है दुखी रहता है, जीव भगवान का ही अंश है। जीव को यदि ये बुद्धि आ जाए कि वो भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ ले तो फिर भगवान जो सच्चित आनंद है उतने ही सच्चित आनंद का अनुभव जो है वो जीव कर सकता है। लेकिन जीव भगवान से दूर रहकर आनंदित होने का प्रयास करता है जिसके कारण दुखी होता है, और उस दुख के कारण उसे काम भी होता है क्रोध भी होता है, अलग अलग विकार उस पर आकर्षित होते हैं। लेकिन यदि वो भगवान के साथ संबंध जोड़ देगा तो जिस तरह से भगवान सारे विकारों से रिक्त है, भगवान सारे विकारों से पवित्र है, उसी तरह जीव भी पवित्र हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा आनंदमय हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, तो मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। थैंक यू।